તારીખ 6/3/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 108 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 11
લેતે આપસે પૈસે નહીં લેંગે તો કોઈ દેતે હૈ પૈસે કહેને વાલે કોઈ દેતે હૈ પૈસા નહીં આયેગા એસે ભી ઘબરાને કી જરૂરત નહીં હૈ જો સમજદાર હોંગે વો જ્યાદા સે જ્યાદા દેંગે ઓર ના સમજ કા લેને કી ભી જરૂરત ઠીક હૈ કામ તો સમજદારો સે કરો देखो गुरुदेव का जीवन देखो सोनगढ़ में कंडीशनल डोनेशन का स्वीकार नहीं होता था गुरुदेव जब थे तब तक की बात है अब की मैं नहीं कह रहा कोई कंडीशन से पैसा नहीं ऐसा भी लिखे कि यहां एक 25 रुपये का एक तोरण लगाने का है लेकिन उसमें हमारा नाम रखना है और पैसा देंगे 11,000 कितना एक तोरण लगाने का किस कीमत तो 25 रुपये की होती है 11,025 हमारा लगेगा संस्था को 11,000 नेट मिलेगा 11,000 में से 25 कम नहीं मिलेगा हमारे सामने चली थी वो बात मंदिर जी के दरवाजे पे एक आदमी ने बोला कि हमारा बेटा गुजर गया है हमको 11,000 देना है लेकिन इसका नाम इधर लिखना है ना दे दिया नाम लिख करके पैसा नहीं देना है और लेना भी नहीं है तो वहां किसी का नाम नहीं चलता देखिएगा और यहां तो एक चौकी पर भी नाम मिलेगा एक सीढ़ी पर भी नाम मिलेगा कदम कदम पर नाम मिलेगा अन्य मती लोग तो नहीं समझते लेकिन हम लोग तो दिगंबर शास्त्र पढ़ने वाले दिगंबर हैं हमारे शास्त्र में तो ऐसी शिक्षा है कि इसमें मान कषाय बढ़ता है मिथ्यात्व बढ़ता है परिभ्रमण बढ़ता है ऐसी जहां शिक्षा है वहां ऐसा चलता है तो और जगह की अपेक्षा हम क्या रखेंगे और जगह तो वो चीज ही नहीं है बोध भी ऐसा नहीं है उपदेश भी ऐसा नहीं है जहां सच्चा उपदेश है वहां कदम कदम पे ये देखने में आता है हमको तो आश्चर्य होता है यहां भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं छोटी छोटी चीज पे नाम लिखा जा गया है ये पंखा इसने दिलवाया ये चौकी इसने दिलवाई ये फर्श इसने करवाई ये बारी इसने खिड़की इसने बनवाई उसने वो बनवाया उसने एक नाम दो दो नाम तीन तीन नाम ये सब कसाई बढ़ाने की प्रवृत्ति है सब मान कसाई बढ़ाने की प्रवृत्ति है भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते फिर मानुष तो पर्वत होता है वहां रत्न से अपना नाम लिखने को गए पहले चक्रवर्ती था इस 24 के ऐसे तो आनंद हो गए लेकिन इस 24 के पहले थे तो देखा कि यहां तो जगह ही नहीं है मेरे नाम लिखने के जब चक्रवर्ती को जगह नहीं मिलती है तो मामूली मनुष्य के दिल कोई गिनती नहीं करना है उसने दूसरे का नाम पहुंच करके फिर अपना नाम लिखा रत्न से वैरागी थे ज्ञानी पुरुष थे देखो एक दिन मेरा भी नाम पर ये पहुंच लगेगी तो नाम का तो कोई मूल्य ही नहीं है नाम का नाश होता है। नाम किसका होता है? देह का नाम है, आत्मा का कोई नाम होता नहीं है, वो तो अनामी है। हमारे यहाँ गुजराती में सबको ननामी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदमी मर जाता है ना कोई मनुष्य, तो फिर बोलते हैं कि भाई ननामी को बांधो, ननामी को ले जाओ स्मशान में, क्योंकि इसका नाम नहीं रहा, अभी ननामी बोलते हैं। आत्मा भी ननामी है, मुर्दे को ननामी कहते हैं। तो ये आत्मा है वो शरीर रहित है, अनामी है, ननामी है, जो भी है, जिसका नाम नहीं है, ऐसे नाम का, मुर्दे के नाम का आग्रह किस बात का? मुर्दे तो मुर्दा ही कहते थे। हाँ? क्या कहते थे? ये स्मशान का लकड़ा बोला जा बोलते थे गुरुदेव। तो बहुत करते हैं ना, ये लगाते वो लगाते, तेल लगाते, अत्र लगाते, वो लगाते वो लगाते, पाउडर लगाते, फलाने लगाते। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मुर्दे को स्नान कराने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा है कि इन बातों की अपने को कोई जरूरत नहीं है। अपने की तो आत्मा को लाभ नुकसान हुए ऐसे प्रश्न करिए। ऐसे प्रश्न करने के लिए समय भी कहाँ है? एक घंटे में अपने को तो मुद्दे की बात करना है। फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मुर्दे को क्या किया जाता है, क्या अपने को क्या फायदा है इसे? अपने तो अपना शरीर है वो मुर्दा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, अब भी माने। जैसे स्मशान घाट में जो भी लकड़ी होती है वो लकड़ी को कोई पॉलिश करते हैं क्या? स्मशान घाट में गोडाउन होते हैं लकड़ी के, उसको पॉलिश किया जाता है? क्यों क्यों नहीं? वो जलने वाली है, उसको पॉलिश करने से क्या फायदा? ऐसे वो भी जलने वाली चीज है, ये शरीर भी जलने वाली चीज, चल जलने स्मशान की लकड़ी ही है, उसको पॉलिश करने से कोई फायदा नहीं है। फालतू की मेहनत है, कहते थे गुरुदेव। तो उसमें समय नहीं गंवाना है, अपना आत्मा का काम करने में समय गंवाओ। जैसा शरीर होने वाला है होता रहेगा, इसकी समाज ज्यादा करना नहीं चाहिए। सही दान वो है कि जो भी पूर्व कर्म के पुण्य योग से संपत्ति का योग हुआ हो, तो बताएं तो पूर्व कर्म के योग से, वर्तमान की अक्कल होशियारी से तो नहीं बताना। अब पूर्व कर्म से हुआ तो पाई पाई भी सन्मार्ग में लग जाए, किधर लगे? सन्मार्ग में लग जाए, वितराग मार्ग का उद्योत हो, ज्ञान का प्रचार हो, जिस ज्ञान के प्रचार से जगत के सभी प्राणी सुखी हो जाए, किसी को भी दुख नहीं रहे, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, ऐसी भावना के साथ पैसों को सन्मार्ग में लगाना, इस प्रकार से भावना रख करके दान करना, वो सबसे अच्छा बढ़िया दान है। बात तो ये दान की चल रही है, विषयांतर कहां तक करेंगे? मत विशिष्ट प्रकार की है इसलिए नहीं समझ में आती है क्या प्रश्न है इनका कि लोग तन मन धन को तो न्योछावर करते हैं, ऐसे भी होते हैं ना कि चलो हम दीक्षा अंगीकार करते हैं, परिवार में कोई रहने नहीं है नहीं, जितना भी है दे दो, धार्मिक संस्था में दे दिया, तो तन मन धन का दान देना तो हो सकता है, आसान भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति का त्याग करना उतना आसान नहीं है। प्रकृति का त्याग करना ये पुरुषार्थ अधीन होता है, इसका पुरुषार्थ कोई अलौकिक प्रकार का होता है, और वो पुरुषार्थ करना करने से आत्मा बंध बंधन से मुक्त होता है। प्रकृति मैंने क्रोध मान माया लोभ आदि जो दूषित परिणाम है उसको त्याग देना वो सबसे बड़ा त्याग है, तन मन धन से भी वो सबसे बड़ा त्याग है। तो क्या होता है कि जैसे कोई उपवास करता है, प्रकृति का क्रोधी आदमी हो क्रियाकांडी हो जाता है, छोटी मोटी क्रिया भी बहुत सावधानी से करता है, लेकिन क्रोध में कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो कुछ भी करो लेकिन प्रकृति का दोष नहीं टूटता है तो क्रियाकांड करने से क्या फायदा हुआ, उसमें तो त्याग होगा, क्रिया में त्याग तो होता रहेगा लेकिन प्रकृति का त्याग नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो अपने भावों पर देखना है, द्रव क्रिया को नहीं देखना है। यमुना में तुझे हित की बात कही, सुख अंतर में है, दोबारा दोहराते हैं श्रीमद जी के, सुख अंतर में है। इस पत्र में ये बात केंद्र स्थान में नहीं है, पांच दफे वो बात एक पत्र में वो कह रहे हैं बार बार कि सुख अंतर में है। क्यों? कि ये मान्यता जहां तक नहीं बदली कि सुख अंतर में है, अनादि से ये मान्यता है कि सुख कहीं बाहर निवार है, और सभी प्रकार के दोष पनपने का उत्पन्न होने का कारण यही है कि सुख बाहर में कहीं न कहीं है। तो बाहर में जो सुख प्राप्त करने को जाएगा वो दूषित परिणाम के किए बिना रहेगा नहीं। अनंत प्रकार के दोष होने का मूल कारण यही है कि जीव ने सुख कहीं न कहीं बाह्य पदार्थ में मान रखा है, उस पर चौकड़ी लगा दो कि सुख बाहर कहीं, मेरा सुख बाहर में कहीं है ही नहीं, मेरा सुख मेरे अंतर में है और मेरे अंतर में से ही मुझे मेरे सुख की प्राप्ति करनी है, और जगह मेरा सुख मेरे ढूंढना भी नहीं है, प्राप्त करने का तो सवाल भी है ही नहीं। ये अंतर में सुख है और अंतर की सम श्रेणी में ये प्राप्त होता है, वो बात तो वो आगे कह चुके हैं कि अंतर अंतरंग परिणाम से अंतर्मुख परिणाम से ही इसकी प्राप्ति होगी, किसी भी प्रकार के बहिर्मुख परिणाम से अंतर के सुख की प्राप्ति नहीं होती। आगे भी पत्र लंबा छोड़ा है, सेशंस जो है आगे के स्वाध्याय में देंगे।
अभी सभी भक्त बैठे रहे,
श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 108 चलता है। 108 पत्र में कितने महत्वपूर्ण वचनामृत हैं उस पर स्वाध्याय चलेगा। जो कल से विषय चालू था वो विषय था कि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका निषेध किया है इस वचनामृत में। इसके लिए ऐसा करना है यह भविष्य निर्णय करके मत रख। भविष्य का निर्णय किसी के लिए कुछ भी करने का नहीं करना चाहिए। क्यों? कि निर्णय के पीछे इसकी चिंता चलती रहेगी। जहां तक यह कार्य संपन्न भविष्य में नहीं होगा वहां तक इसके विकल्प चालू रहेंगे और प्रत्येक वर्तमान काल इसके पीछे गवाना हो जाएगा। इस तरह से ज्ञानी कभी भविष्य में इस प्रकार के कार्य करने का निर्णय नहीं करते। जिस काल में जिस क्रम से जैसा भी बदल आता है उस बदल के बीच में सम्यक प्रकार से दूर निकल के उसको देखे निर्जरा कर लेते हैं। इन उनका अंतरकरण मन का प्रैक्टिस यानी प्रयोग रहता है। जो भी उदय हो कार है, दो भेद हैं। शुभ प्रकृति के भी उदय आते हैं, अशुभ प्रकृति के भी उदय आते हैं। जो भी शुभाशुभ उदय आए आने दो। जब मेरे से भिन्न है तो फिर चिंता काहे की, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए ऐसा निर्णय तो जिसने लाभ नुकसान मान रखा हो वही करता है। जब बाहर में लाभ नुकसान का कोई प्रसंग नहीं है तो ऐसा निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञानी अपने परिणमन के अनुसार यहां उपदेश देते हैं। जो प्रकरण चलता है मुमुक्षु को तो ज्ञानी की आज्ञा में रहना है। ज्ञानी को अपने स्वरूप का अवलंबन है, इसलिए इनके परिणाम सीधे चलते हैं। अब मुमुक्षु को अपना स्वरूप का अवलंबन तो हाथ नहीं आया, तो ये प्रश्न हो सकता है कि वो बेचारा क्या करे। फिर ज्ञानी के तो दो खूंटा है हाथ में, वो खूंटा को पकड़ करके बैठ गए हैं, तो इनके परिणाम सीधे सीधे चलते हैं, आड़े टेढ़े नहीं चलते। मुमुक्षु को क्या करना है? मुमुक्षु को ज्ञानी की आज्ञा में रहना है, बस इनके परिणाम सीधे चलने लग जाएंगे। और ऐसे में ज्ञानी इनको ध्रुव तक पहुंचा देंगे। क्या करेंगे? वो ध्रुव तक पहुंचा देंगे कि देखो तेरा ध्रुव धाम है, जिसका मैं अवलंबन ले रहा हूं वो तेरे पास भी है, और इसका जो अवलंबन लेने का तरीका है वो तुमको देखना है तो साक्षात हमारे में देख ले। तुमको देखने से ही वो परिणमन करने का सीखने को आ जाएगा। ज्ञानी जो कहते हैं अपने हित की बात उसका अमलीकरण करता है, आज्ञा में रहता है मतलब उसका अमलीकरण करता है। ज्ञानी जानते हैं कि इस वक्त तुम्हें क्या करना है, वर्तमान में मुमुक्षु की योग्यता देख करके वो मार्गदर्शन देते हैं तुम्हारे लिए वही अच्छा है। उनको जो आचरण में ले लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, अमलीकरण कर देते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। जो भी स्टेज में जो भी मुमुक्षु हो उस स्टेज से उसको आगे बढ़ना है क्रम से, उनको ये क्रम बताएंगे। जैसे कोई परिभ्रमण के वेदना में आया हो उनको कहेंगे कि तुम पूर्णता का लक्ष्य करो, जो पूर्णता के लक्ष्य में आए हैं उनको कहेंगे कि तुम अपना अवलोकन करो, अवलोकन में आए हैं उनको कहेंगे कि तुम अपने स्वरूप की जिज्ञासा पूर्वक अवलोकन करो, और जो अवलोकन बराबर करते हैं उनको भेद ज्ञान में ले जाएंगे, जिसको भाव भाषण नहीं होगा उसको भाव भाषण करेंगे। बस वही इनकी आज्ञा है और क्या है, आगे आगे बढ़ता जाएगा। भाव भाषण है वो स्वरूप की पहचान है, जैसे सोने को कसौटी पे घिस करके ये सोना है या नहीं है इसकी पहचान की जाती है कि नहीं। सोना को सोना कहने से नहीं चलता, उसकी पहचान है इससे ही इसका खरे खरा मूल्यांकन होता है। बिना पहचान तो असली जगह कोई नकली माल भी आ जाता है तो ठीक आ जाता है आदमी। इस तरह से स्वरूप की पहचान है उस स्वरूप का भाव भाषण है। आगे कहते हैं कि इसके लिए ऐसा नहीं हुआ होता तो सुख होता, ऐसा स्मरण नहीं कर मत कर, भूतकाल का सोच करने लायक नहीं है। ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा स्मरण कर करके दुखी होना जरूरी नहीं, जो हो गया सो हो गया, वो स्मरण करने लायक नहीं है। इतना उस प्रमाण में होता तो अच्छा रहता, ऐसा आग्रह मत रख। देखो बाह्य कार्य में छोटे मोटे विषय में जिसकी सरलता नहीं होती उतना उसको आग्रह रहता है। आग्रह जिद, हठ, वक्रता, असरलता ये सब एक जाति के परिणाम है। तो जो आग्रह रखता है बाह्य प्रसंगों में, उनको बाह्य प्रसंग का पक्कड़ उतना है, उस पक्कड़ में उसके परिणाम बाह्य कार्य में रुक जाते हैं, वो भीतर में आ सकता नहीं। इसलिए बाह्य प्रसंग में, बाह्य कार्य में कोई अपना आग्रह होना नहीं चाहिए। परेच्छानुचारी हो जाना, क्या ऐसे मामलों में परेच्छानुचारी हो जाना, आप जैसा कहो वैसा चलेगा, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुकूलता प्रतिकूलता सब गौण हो जाएगी, और जितने भी हमारे उदय के कार्य में जो भी लोग शामिल होंगे, सबको अपनी इच्छा अनुसार कार्य होने का तो भाव रहता है, अभिप्राय रहता है, होने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परेशान सारे हो जाओ। उल्टा तो होना जैसे चली ही है, उल्टे तो चले ही है, इसकी कथा तो कितनी करेंगे, बहुत उल्टे चले हैं। अब तो हमारे परिणाम को सुलटाना है, तो इसलिए तो ये स्वाध्याय आदि होता है कि कैसे करें। उसने मेरे प्रति अनुचित किया, ऐसा स्मरण मत सीख। मैंने भूतकाल में मेरे लिए उसने ऐसा अनुचित बर्ताव किया था, उसको स्मरण में लेना नहीं है। क्या फायदा इससे, द्वेष बढ़ेगा और कुछ होगा नहीं। जिसको राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है, उसको ऐसे शिक्षा को मानना चाहिए कि मेरे लिए उसने ऐसा अनुचित किया था, मेरे लिए ऐसा अनुचित किया था, मेरी निंदा करते थे, मेरे वो करते थे, वो करते थे, वो कोई जरूरी नहीं है, गौण कर दे। उसने मेरे प्रति उचित किया, ऐसा स्मरण भी मत रख, क्योंकि वो राग का कारण हो जाएगा। अनुचित का स्मरण द्वेष का कारण बनेगा, उचित का स्मरण राग का कारण बनेगा, वो भी करने लायक नहीं है। यहां मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प मत कर, ये मेरे लिए अशुभ निमित्त है, कोई अशुभ नहीं है, ऐसी कल्पना करने लायक नहीं है। खास करके ये जो सुकुम जोते हैं ना, देखते हैं ना, सफर में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, बिल्ली आई थी सामने, हाँ, गाय आई या बिल्ली आई या कौन आया कौन नहीं आया, हाँ, ये कोई देखने लायक नहीं है। शुभ चिन्ह है, छोड़ दे इस विकल्प को, क्यों कि तुमको तो आगे जाकर के सबसे भेद ज्ञान करना है, जिसकी पकड़ करोगे उसे भेद ज्ञान करोगे कैसे, हो ही नहीं पाएगा। यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसे दृढ़ता मान करके नहीं मत बैठ, ऐसा मान करके बैठना नहीं है कि ये मेरे शुभ निमित्त है, शुभ चिन्ह है, अब मेरे सब अनुकूलता होने वाली है, तो इसमें तुम्हारे परिणाम ठिकाने में रह गए। नहीं, थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो फिर परिणाम विकल्प के चक्कर बढ़ जाएंगे। यहां नहीं होता तो मैं बंधता नहीं, ऐसे अचल व्याख्या करके नहीं बैठना, नहीं करना, नहीं करेगा, ऐसी अचल व्याख्या नहीं करना है। दूसरे लोग मुझे बांधते हैं, इस प्रकार के प्रसंग बने इसलिए मैं बंधा, वो बात ठीक नहीं है। मेरे कारण से अगर बंधा तो भी मेरे कारण से, मेरे अपराध से, और छूटेगा तो भी मेरी साधना से। छूटना साधना से होता है, आराधना से होता है, और अपराध होता है तो अपने खुद के अपराध से बनते हैं, दूसरे पर वो आरोप करने लायक नहीं है। पूर्व कर्म बलवान है इसलिए ये सभी प्रसंग मिल गए, ऐसा एकांतिक ग्रहण करना नहीं। पूर्व कर्म के कारण से ये सब बना है, मैं क्या करूं? एकांतिक ग्रहण करने से अपना पुरुषार्थ छूट जाएगा, पुरुषार्थ नहीं चलेगा। पूर्व कर्म कितने भी बलवान हो, भीतर में भिन्नपना करना वो तो अपने पुरुषार्थ के अधीन है, उसमें पूर्व कर्म का बलवानपना कोई काम में नहीं आता है। जो भी प्रसंग बनता है वो आत्मा से बाहर ही बनता है, और आत्मा को कोई सुख दुख पहुंचाने के समर्थ नहीं है। उसका मेल बिठाएंगे अगर कहीं आएगा तो। हाँ, पूर्व कर्म बलवान है। अच्छा ठीक है, पूर्व कर्म बलवान है ऐसा लेने वाला अपने साधु के प्रति बलवान निर्धार नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा साध्य है पूर्ण शुद्ध दशा, और हमारा प्रयास भी पूर्ण शुद्धि के लिए होना चाहिए स्वरूप के अवलंबन से, लेकिन निर्धार तो दृढ़ होना चाहिए ना। उसमें पूर्व कर्म बलवान है, पूर्व कर्म बलवान है, मैं क्या करूं? वो काम कर सकेगा नहीं। तो ऐसा दृढ़ निर्धार कैसा होना चाहिए, ये श्रीमद् जी के शब्द में ही 128 नंबर के पत्र में बहुत जोर से वो बात आई है। चांदे जैसा हो जाए, क्या हमको हमारा कार्य करना ही है और इस संसार परिभ्रमण से छूटना ही है, चाहे जैसा हो जाए, चाहे जितना दुख सहन करना होवे, चाहे जितना परेशान सहन करना होवे, चाहे जितना उपसर्ग सहन करना हो, चाहे जितनी व्याधियां, व्याधियां मैंने शरीर के रोग आ जाए, चाहे जितनी उपाधियां आ जाए, उपाधि कुटुंब के, परिवार के, दूसरे दूसरे व्यापार व्यवसाय आदि की उपाधि आ जाए, चाहे जितने आदियां मैंने अपने पर आपत्ति आ जाए, उपाधि है दूसरे के आपत्ति को दूर करने की चिंता को उपाधि कहते हैं, और अपने पर जो आपत्ति आती है उसको दूर करने की चिंता को आधि कहते हैं। आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों जीव को दुखदायक है। चाहे जितनी आ पड़ो, चाहे तो जीवन काल, मैंने आयु एक समय मात्र हो, ज्यादा आयु नहीं हो, और साथ में दुर्निमित हो, विपरीत परिस्थिति हो निमित्त में, परंतु ऐसा करना ही है। परंतु परिभ्रमण से छूटने के लिए जो भी करने लायक है वो करना ही है। वहां तक हे जी तेरा छुटका नहीं है, छुटकारा नहीं है। ऐसा दृढ़ निर्धार को पूर्णता का लक्ष्य बोलने में आता है। गुरुदेव ने जो पूर्णता का लक्ष्य कहा है वो ऐसा निर्धार पूर्वक होता है। यहां तो थोड़ा भी गड़बड़ संयोग में होता है तो हमारे परिणाम के ठिकाने नहीं रहते। इसका यही कारण है कि हमारा निर्धार ही हुआ नहीं है। जिसको निर्धार होता है वो बहुत जोर से चलता है, उसको संवेग आता है, आत्म कार्य करने के लिए उसको संवेग की उत्पत्ति हो ही जाती है। ऐसा संवेग, जो बात किया, ऐसा जोर, ऐसा संवेग ये पूर्णता के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्णता का लक्ष्य वह है, इसका सबूत है कि ऐसा संवेग उत्पन्न हो जाता है। अगर ऐसा संवेग नहीं उत्पन्न होता तो उसने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। जिसने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया उसका अभिप्राय जो अनादि का संसार के प्रति कार्य करने का है, जो परिभ्रमण का कारण है, उसमें कोई हेरफेर हुआ नहीं है। जिसका अभिप्राय नहीं बदला इसका परिणाम भी कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए पूर्व कर्म बलवान है, इसलिए ये सभी प्रसंग मिल गए। ऐसा एकांतिक ग्रहण करना नहीं, ऐसा एकांतिक ग्रहण करना नहीं चाहिए। पूरा पूरा वजन कर्म के उदय पर नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ की प्रधानता होनी चाहिए। पुरुषार्थ का जय न हुआ ऐसी निराशा स्मरण नहीं करना, मैं हार गया, मेरा पुरुषार्थ नहीं चला, मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, मैं हार जाता हूं, ऐसा बार बार स्मरण करने लायक नहीं है। वो पुरुषार्थ को ऊपर उठने नहीं देगा, इस प्रकार के विचारधारा नहीं होनी चाहिए मुमुक्षु के। दूसरे के दोष के कारण से तुझे बंधन है ऐसा मानना नहीं, ऐसा मत मानना कि दूसरे के कारण से बंधन है। क्या करे, ऐसे ऐसी परिस्थिति है और वो ऐसा करता है तो हमको ऐसा होता है। ये दूसरे के कारण से बंधन है, मुझे होता है इसलिए मैं बंधता हूं, मुझे दोष होता है, मुझे अपराध होता है, ये बात सरासर झूठ है। जो कुछ होता है वो अपनी योग्यता से होता है। तेरे निमित्त से भी दूसरा को दोष करने को भुला दे। अगर तुझको पता है कि तेरे निमित्त से दूसरे को ऐसे वैसे परिणाम दूषित हो जाएंगे तो ऐसा वो भूल जाए, ऐसा तुम करो, ऐसा बर्ताव करो कि वो ऐसा करना भूल जाए। कितनी सरलता होगी, सरलता कितनी होगी, जबकि दूसरा दोष करता है इनकी योग्यता से, स्वयं तो उसके निमित्त होते हैं, परंतु जो उसको अपने को पता है तो उस बात को भूल जाए, ऐसा हमारा वर्ताव होना चाहिए। हम एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तेरे दोष से तुझे बंधन है, यही संत की पहली शिक्षा है। तुझे जो बंधन होता है वो तेरे दोष के कारण से होता है। कभी भी अपने बंधन के लिए दूसरे पर आरोप नहीं करना चाहिए, ये मिथ्या आरोप है, कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना बंधन अपने लिए है, दूसरे के कारण से है ही नहीं। ये तो संतों की पहली शिक्षा है, वरना दोष करेगा तो और आरोप डालेगा दूसरे पर। पर असरलता से जीव ने बहुभाग ऐसा ही किया है, जब भी किसी को दोष बताएंगे ना, देखो ऐसा तो तुम्हारा दोष अच्छा नहीं है, तो क्या करें, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ है, दूसरों ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ है, ये बात आए बिना नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये विपरीत आदत बन गई है जीव की, यहां पर छुड़ाते हैं, ये विपरीत आदत है। तेरा दोष उतना ही है, तेरा दोष उतना ही है कि अन्य को अपना मानना और अपने आप को भूल जाना, सबसे बड़ा दोष उतना ही है। मूल दोष, सबसे मूल में जो दोष है वो उतना ही है कि अन्य को अपना मानना, अपने आप को भूल करके दूसरे को अपना मानना। ये शरीर मेरा है, ये पुत्र परिवार अभी मेरे हैं, ये माँ बाप मेरे हैं, ये भाई बहन मेरे हैं, ये घर संपत्ति कपड़े आदि मेरे हैं, अन्य को अपना मानना यही मन में दोष है। उसको ही अज्ञान कहते हैं, उसको ही मिथ्यात्व कहते हैं। पर में अपनत्व करना, दूसरे को अन्य को अपना मानना, ये सबसे भयंकर अपराध है। नॉर्मल लाइफ में, सामान्य जीवन में लोगों को इस बात की समझ नहीं है। इसमें क्या है, क्या माँ अपने बेटे को अपना बेटा नहीं मानेगी? हाँ, पत्नी अपने पति को अपना पति नहीं मानेगा क्या, मानेगी क्या? हाँ, बाप बेटे का प्यार नहीं होगा क्या, भाई भाई का प्रेम नहीं होगा क्या? हाँ, आपस में कोई फर्ज नहीं होती क्या? अपनत्व दृढ़ करने के लिए उतनी उतनी बातें बना रखी हैं कि परिभ्रमण के चक्कर में डालने वाला सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, उसकी गिनती नहीं होती। कि इतना बड़ा अपराध है, कोई गिनती उसकी नहीं करते। क्या है इसमें, क्या है, ऐसा तो नहीं चाहिए कम से कम। लेकिन अन्य में अपनापन करना यही सबसे बड़ा अपराध है। कोई भी मनुष्य सामान्य कौटुंबिक जीवन जीता है पर उसमें इसको उसका ऐसा परिणाम होता रहता है। मनुष्य मर करके दुर्गति में जाता है, इसका कारण क्या? ऐसा मनुष्य भी तो कोई बड़ा पाप नहीं करता, बड़ी हिंसा नहीं करता, कोई बड़ा अपराध ऐसे लौकिक में गिना जाए ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं करता, फिर भी दुर्गति में जाता है, इसका क्या कारण? सामान्य मनुष्य क्यों जाता है? कि कम से कम अपना परिवार में अपने तो किए बिना तो रहेगा नहीं,